सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जग अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपा वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये काशी विश्वनाथ भगवान की जय भागवत भगवान की जय व्यास जी महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की जय प्रेमपुरी जी महाराज की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सब संतन की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम कृपालु, परम दयालु, चराचर परब्रह्म भगवान की असीम कृपा से हम पुनः एक बार उनका स्मरण, चिंतन, वंदन करने के लिए पुनः यहां पर उपस्थित हुए हैं। जैसे कि महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है, जन्माद्यस्यतः, वही आदि कारण परमात्मा, उसका हम लोग ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि, धर्म का स्वरूप बतलाते हुए उन्होंने मंगलाचरण के द्वितीय श्लोक में कहा था, सद्यो रद्य वरुद्धते श्रुतिभिः शुश्रूषु तत्क्षणात्। द्वितीय जब मंगलाचरण का श्लोक आता है उसमें भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि वो जो परमात्मा है, जब उनका हम लोग श्रवण करते हैं, शुश्रूषु तत्क्षणात्, जैसा उसका स्वरूप है तो वैसा वैसे की वैसे आकार में अपने हृदय में वो उपस्थित होता है। उन सब परमात्मा जो सत्य रूप है, जो परमात्मा अव्यक्त है, इंद्रियों के द्वारा जो दृष्टिगत नहीं होता है, वो परमात्मा अपने भावनाओं से वो व्यक्त हो जाता है। और भगवान व्यक्त हुए कि नहीं, वो जो परमात्मा है जिसकी हम लोग यहां पर कथा कर रहे हैं, वो कल हम लोगों के सामने प्रकट हुए कि नहीं हुए, हो गए ना? वही परमात्मा का स्वरूप जो अव्यक्त था, वही तो हमारे भगवान की विशेषता है। और भगवान की बात हम नहीं कहते हैं, परंतु अपनों की बात करते हैं। जब हम लोग पुकारते हैं तो पहुंच जाता है। पुकारा बहुत लोगों ने, जो गजेंद्र था, जो प्राणी था, उसको हमारे जैसी उसको वाणी नहीं थी, फिर भी उसको वो आया और वो उसको संकट से छुड़ाया, ऐसा हम लोगों ने सुना ना? तो ये हमारे भगवान की बड़ी विशेषता है, बड़ा कृपालु है। जब कोई भक्त और कभी कभी कोई अभक्त भी उसको जो पुकारता है, हिरण्यकश्यपु ने प्रश्न किया, किस खंभे में वो है क्या? वहां पर प्रह्लाद जी ने उनको पुकारा नहीं है, वो केवल स्मरण करते थे, उनको केवल स्मरण करते थे, उन्होंने कभी पुकारा नहीं कि मुझे बड़ा कष्ट है, कभी पुकारा, केवल उनका स्मरण करते थे। परंतु जब प्रश्न किया हिरण्यकश्यपु ने कि क्या इस खंभे में भी है, तो उन्होंने उनका स्वरूप का दर्शन कराया कि क्यों नहीं है, वो तो सर्वत्र है। ऐसा हमारा परमात्मा है, जो अव्यक्त है, और वही परमात्मा व्यक्त होकर के कहां आया? कारागृह में, रात्रि को 12 बजे, अष्टमी तिथि, रात्रि के प्रहर में। और रात्रि के समय में वो परमात्मा आता है, और कैसा उसका स्वरूप है, यहां पर उसका स्वरूप बताते हैं भागवतकार। यहां पर कहते हैं कि जो परमात्मा है, जो वहां कारागृह में जो प्रकट हुआ, लोग कहते हैं कि उनका जन्म हुआ कि नहीं हुआ, परंतु भगवान यहां पर प्रकट होते हैं। भगवान का स्वरूप क्या है? तमद्भुतम बालकम मुझे क्षणम, अद्भुत बालक, बालक का स्वरूप धारण कर लिया। चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम, ऐसा अद्भुत बालक ऐसा अब तक कोई बालक देखा ही नहीं। किसी बालक का जन्म हुआ हो और उसके पास में ऐसे आयुध हो, वो चतुर्भुज हो, उसके पास में शंख हो, गदा हो, चक्र हो, गले में श्रीवत्सव लक्ष्मी गल शोभित कौशुभम, गले में कौस्तुभ मणि विराजमान हो, पिने वो हो पीताम्बरम सांद्र पयोदशोभगम, पीताम्बर धारण किए हुए बालक का जन्म भी हुआ, अद्भुत बालक। यहां पर भागवतकार कहते हैं कि अद्भुत बालक है और उसका स्वरूप क्या है, चतुर्भुज है। ये हमारे भगवान का स्वरूप है। उनको लगे भी ऐसे अद्भुत बालक को जब सर्वप्रथम देखा किसने, वसुदेव जी ने देखा। और वही वो वसुदेव होते हैं, पहले भगवान शंकर ने पार्वती से कहा था, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, जो सत्व विशुद्ध जिसका हृदय शुद्ध है वही वसुदेव है। और जब तक अंतकरण शुद्ध नहीं होता है तब तक परमात्मा का जैसा है वैसा दर्शन नहीं होता है, दर्शन होता है। हम लोगों को भी अपने चर्म चक्षु से उस भगवान का दर्शन होता है, परंतु हम उस मूर्ति में उस भगवान को देखते हैं। जो वास्तविक दर्शन है वो अंतकरण निर्मल होने के बाद में उस तत्व का दर्शन होता है। और यहां पर वसुदेव जी को उस भगवान का दर्शन हुआ और वसुदेव जी भगवान को कहते हैं कि हे भगवान, विदितोऽस्मि भवान साक्षात, मैं आपको जानता हूं। यहां पर कहते हैं कि मैं आपको जानता हूं। ये भक्त कह सकता है जो वास्तविक स्वरूप में भगवान को जानता हो। साक्षात पुरुषः प्रकृतेः परः, आप इस प्रकृति से परे ऐसा परमात्मा है, आप अव्यक्त है, अव्यय है। केवलानुभवानंद, आपका जो स्वरूप है केवल आपका अनुभव और आनंद स्वरूप में आपका दर्शन होता है। भगवान को हम देखते हैं कि अनुभव होता है, भगवान को देखते हैं और अनुभव भी होता है, परंतु यहां पर कहते हैं कि आपका केवल अनुभव और आपका जो स्वरूप है वह है आनंद स्वरूप। और आप कैसे हैं, सर्व बुद्धिधिक, सभी बुद्धियों में सर्वत्र आपका दर्शन हो सकता है, परंतु अनुभव और के साथ साथ में आपको आनंद स्वरूप में आपका दर्शन होता है। इसका मतलब यह है कि भगवान को वसुदेव जी जानते हैं, जैसे हैं वैसे जानते हैं। और फिर उनका आगे जाकर के उनकी अनेक प्रकार की स्तुति करते हैं। आप भक्तों के कल्याण के लिए आप अवतार ग्रहण करते हैं, आपका जो ये शरीर है, आपका जो ये अवतार है वो भक्तों की रक्षा के लिए है, आपने हमारे उद्धार के लिए आपने ये शरीर धारण किया है। तो भगवान और तब तक वहां पर देवकी उस समय तक कुछ अचेत अवस्था में थी, परंतु जब देवकी को भी जागृति हुई तब भी उन्होंने भी वही स्वरूप को देखा। वसुदेव जी और देवकी दोनों ने उस स्वरूप का दर्शन किया और देवकी भी उनकी प्रार्थना करती है, रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्माद्यम, आपका जो स्वरूप है जो अव्यक्त है, उनको वेद भी नहीं जानते हैं और ब्रह्म ज्योतिर्गुणम निर्विकारम, आपके अंदर कोई विकार नहीं है। ये कौन बोल रही है, ये देवकी अब भगवान की स्तुति कर रही है। वो देवकी भी उस परमात्मा को जानती है। और भगवान ने ऐसा स्वरूप क्यों धारण कर लिया, भगवान ने चतुर्भुज रूप शंख चक्र गदा ये आयुध लेकर के भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ। रहा सहा भय भी जाता रहे, जो सत्वगुण संपन्न होते हैं ना, जो दैवी संपन्न होते हैं, अभयम सत्व संसिद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, क्योंकि जो दैवगुण संपन्न व्यक्ति होता है उसको सबसे पहले अभय होता है। आप लोगों ने संतों का जब चरित्र सुना था उस समय वहां पर कहा गया था, जिनका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रुवः है ना, जिनका कोई शत्रु न हो, किसी को भय न हो। दुनिया तो कहते हैं कि भय के ही कारण दुनिया में हम लोग भयभीत होते हैं, और अनेक प्रकार के भयाद्वितीयम, हमारे यहां पर कहा गया है कि जो दूसरा होता है उससे अपने को भय होता है। कोई राजपुत्र है और बड़ा है तो उसको कोई भय नहीं, क्योंकि मेरे समान कोई है ही नहीं, मैं ही बड़ा हूं ना, दूसरा राजा बनने वाला नहीं है। परंतु दूसरे देश का राजा कोई आकर के आक्रमण कर सकता है, उसके लिए तैयारी रखनी पड़ती है, उसके लिए हमेशा भयभीत रहता है। अपने यहां पर बड़े बड़े किले बने हैं ना, इसलिए बने हम सुरक्षित रहे। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं सबसे पहले उनका गुण होता है अभयम, अभय होना चाहिए। और अभय करने के लिए भगवान अपना स्वरूप दिखाते हैं कि तुमको अब भय करने की आपको तुमको आवश्यकता नहीं है। पहले थोड़ा सा संदेह था कि जैसे ये कंस उसने हमारे छह पुत्र को मार डाला, ऐसा न हो कि ये जो अष्टम गर्भ, सप्तम गर्भ तो यहां से जा चुका है, परंतु ये अष्टम गर्भ को भी वो उसका भी विनाश न करे। थोड़ा सा संदेह था वसुदेव और देवदत्त के मन में। उसको निवृत्त करने के लिए भगवान ने कौन सा स्वरूप धारण कर लिया? चतुर्भुज, बालक नहीं है, अद्भुत बालक। और देवकी कहती है कि रूपम यत्तद्रम त्रागुरव्ययम ब्रह्म ज्योतिर निर्गुणम निर्विकारम। आपका जो स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप है। ज्योति किसको बोलते हैं? ज्ञान को। तमसो मा ज्योतिर्गमय, वेद ने कहा ना, हम तम से अंधकार से ज्योति की ओर जाए, हम अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाए, हमारा वेद भी कहता है। तो यहां पर देवकी माता भी कहती कि आपका जो ब्रह्म स्वरूप, एक तो परब्रह्म निर्गुण निराकार ज्योति स्वरूप है और निर्गुण है, जो तीन गुण है सत्व रज तम, इसी से तो ये बना हुआ है, बनी हुई प्रकृति है, उससे आप अतीत हैं। सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम तम साक्षात विष्णु पदार्थ विष्णुर धात्मदीप। आप साक्षात विष्णु आप यहां पर आए हुए हैं, आपकी संपूर्ण सत्ता। इस प्रकार देवकी माता ने उनकी स्तुति की है और अनेक अनेक स्तुति करते हुए फिर भगवान ने कुछ बातें कही। अब वहां पर छोटा सा बालक बातें तो नहीं कर सकता है, परंतु भगवान साक्षात वहां पर अवतरित हुए हैं। उन्होंने वहां पर अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए, उनको स्मरण दिलाने के लिए कहा कि यहां पर कुछ बात करते हैं। त्वमेव पूर्व सर्गीभूत सृष्टि स्वयं भूमि सती। आपको याद दिलाता हूं कि आपने पहले मुझे बड़ा तप किया मेरे लिए, और आपका ये माता आपका नाम प्रश्नी था, वो पहले की बात, जब ये सृष्टि प्रारंभ हुई थी तब की बात है। मैं कहता हूं ना आप लोगों को कि थोड़ा सा आपको ये थोड़ा सा गरिष्ठ लगता हो, पर बातें सत्य हैं। आपको मैं एक तो मुझे कथा किससे आते नहीं है, उधर उधर की बात करने के लिए फिर मैं सोचता हूं कि वो करूंगा तो ये क्या करूंगा। इसलिए अपने पास में जो सत्य है यथार्थ है उसका प्रतिपादन हो तो ज्यादा अच्छा। तो भगवान कहते हैं कि त्वमेव पूर्व सर्गे भूत, तुम जो पहले सर्ग में, कितने समय बीत गया होगा जब इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ होगा, तब स्वयंभ मुनु ने आपको कहा था कि आप इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ, और आपने मेरे लिए बहुत तप किया था, और उस समय मैं आपके तप के बल पर मैं प्रसन्न होकर के आपको मैंने वरदान दिया था, आपने ये वरदान मांगा था कि आपके समान पुत्र हो। उस समय मैंने तथास्तु कहा था, और परंतु आप मेरे समान तो मैं ही हूं, और केवल भगवान भी नहीं है, जितने लोग यहां पर बैठे हैं ना, यद्यपि सबको वही मुखाकृति, वही शरीर के संरचना, वही एक नाक, दो आंखें, दो कान, एक मुंह है ना, सबके वही है ना, क्या अलग अलग है? हम तो एक जैसे हैं ना सब, परंतु एक जैसे है क्या? कोई ना कोई अंतर है ना, हमारे में भी अंतर है। हम विचार करते हैं कि नहीं करते हैं कि ऐसी परमात्मा की सृष्टि है कि हम सब एक समान दिखते हुए भी एक समान नहीं है। इसलिए हम लोग फोटो खिंचवाते कि वो मेरा ही हो है ना। श्रीमद् भागवत यहां पर हो रही है, परंतु बहुत उसका लाभ लोग ले रहे हैं, बहुत ले रहे हैं। जो जैसा कहा जाता है वैसा ही एक समाचार पत्र में छपता है, जिसका नाम है जन्मभूमि। देखो ये संचार माध्यम का ये फायदा है, उपयोग है। यहां कथा हो रही है, कुछ लोग टीवी पर देखते होंगे, यूट्यूब पर देखते होंगे, कुछ लोग चैनल पर देखेंगे, और कुछ लोग उसको पढ़ेंगे, परंतु ये एक समान नहीं है। उसका अलग अलग अर्थ हो सकता है, चित्र हो सकता है, और बहुत से लोग तो पहले पेपर में आज क्या छपा है, मेरा फोटो तो नहीं छपा है। कभी कभी मैं जाता हूं किसी बड़े घर में, खास करके राजनेताओं के घर में, उनके पास में जितने पेपर छपते हैं सबके सब पेपर पड़े रहते हैं। हम सोचते हैं कि पढ़ते कब होंगे। अपने आप को देखने की इच्छा होती है, परंतु अपने पहचाने जाते हैं। आज एक फोटो छपी है ना, हम लोग देख रहे हैं ना उसको, हमारे कार्यकर्ताओं की फोटो छपी है, पहले दिन हमारे विद्यार्थियों की छपी थी, उसके पहले और छपी थी, तो सब लोग देखते हैं कि मैं कहां हूं, है ना, पहचान देखने के लिए कि मैं कौन हूं। और अपने आप को हम पहचान लेते हैं। भगवान ने कहा कि मेरे समान तो मैं ही हूं, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, इसलिए तुम्हारे यहां पर मेरा अवतार होगा, और उस समय आप कृष्ण नाम की माता थी और मेरे पिता सुतपा नाम के प्रजापति थे। उनके घर में मैंने पहले आपके गर्भ से मैंने प्रथम बार जन्म लिया। ये कौन बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अपनी माता देवकी से बोल रहे हैं, उनको याद दिला रहे हैं, तुम पहले भी थे, मैं भी पहले था, परंतु तुमने अपने पुत्र की कामना से मेरी आराधना की थी, और उस समय मैंने तुम्हें तुम्हारे गर्भ से मैंने जन्म लिया था, इसलिए मेरा नाम उस समय पड़ा कृष्ण गर्भ। भगवान का पहले जो पहले ही वाले युग में उस समय मेरा नाम था कृष्ण गर्भ। और ये जो हमारे पिताजी है वसुदेव जी महाराज पहले से ही साधना करने में लगे हुए हैं, तो इनका नाम था सुतपा। उनके वो दोनों के आपके घर में मैंने जन्म ग्रहण किया था, और फिर उसके बाद में एक जब बार मैं बोलता हूं तो सत्य को बतलाने के लिए हम लोग जो शांति मंत्र करते हैं ना, ओम शांति शांति शांति, तीन बार कहते हैं। अगर आपको किसी ने जोर लगा के बुलाया, भाई आऊंगा 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 जरूर आऊंगा, ऐसा बोलते हैं ना, जब हम लोग बोलते हैं तो भगवान ने कहा कि उस सत्य करने के लिए मैंने एक बार और तुम्हारे परिवार में जन्म लिया। कौन सा जन्म लिया? कहते हैं कि आप माता अदिति हुई, आपने मेरी उपासना की थी, और ये जो वसुदेव जी है ये कश्यप हुए हुए ना, और मैंने आपके घर में कौन सा जन्म लिया था? वामन रूप से मैंने आपके यहां पर जन्म लिया था, और उस समय आप मुझे कहते थे, उस समय मैं वामन रूप से आपके पास में आया, और इस जन्म में मैं आपके यहां पर आया हूं, रात्रि के समय आया हूं, जो सामने दिख रहा हूं, अभी नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, परंतु भगवान ने कहा कि जो मैं सामने दिख रहा हूं इस समय इसलिए आया हूं कि आप वसुदेव जी और देवकी यहां पर बने हुए हैं और मैंने तीन बार इसको जन्म को ग्रहण किया आपके यहां पर, और मैं अब ज्यादा देर मत करो। अब उस समय कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इतना बोल करके, इतना उपदेश दे करके, उनको पहचान बता करके, इत्युक्ता ऐसा बोल करके भगवान बालक बन गए, अपना परिचय दिया, उनको निर्भय कर दिया। भगवान भक्त को निर्भय करता है। जब आप किसी पर विश्वास करते हैं ना, हम बड़े का साथ क्यों करते हैं? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि इनके होने से मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आएगी। हम अपना कोई ना कोई दृढ़, हम राजा भी ऐसा ही चाहते हैं कि हमारे देश की रक्षा करे, हमारे धर्म की रक्षा करे, हमारे संस्कृति की रक्षा करे, और आवश्यकता पड़ने पर हमारी भी रक्षा करे। ये नियम है, इसलिए हम चाहते हैं कि कोई दृढ़ हो, सर्वशक्तिमान हो, और परमात्मा से बढ़कर के सर्वशक्तिमान कोई है ही नहीं। इसलिए पहले भगवान अपने को निर्भय करता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप नीचे जाने के बाद में आपको भय लगेगा कि नहीं लगेगा, परंतु हम लोग यहां निर्भय है कि नहीं है, मैं भी निर्भय हूं, निर्भय होने के नाते मैं कह रहा हूं, और आप लोग भी श्रवण कर रहे हैं, अब यहां किसी प्रकार का भय नहीं है। हम निर्भय होकर के उस परमात्मा का हम गुणगान श्रवण कर रहे हैं, इसलिए भगवान ने सबसे पहले निर्भय बनाया और उसके बाद में वो स्वयं बालक हुए, और बालक होने के बाद में उनको कहा कि अब यहां मैं रहूंगा तो उस दुष्ट कंस को पता लग जाएगा और वो फिर कोई ना कोई उद्यम करेगा, इसलिए और मुझे यहां लीला करनी नहीं है, लीला का तो स्थान दूसरा है, इसलिए तुम ऐसा करो कि यहां से तैयारी करो और मुझे यहां से जल्दी जल्दी गोकुल की ओर ले चलो। परंतु वहां तो वो बंदी ग्रह था, हाथ में हथकड़ी, पैर में पैर की बेड़ी, वहां पर बड़े बड़े ताले लगे हुए थे, उस दरवाजों पर द्वार बंद थे और ले जाने का कोई साधन नहीं था। यहां तो नहीं कहा है, परंतु वहां पर कोई ले जाने का साधन भी नहीं था, तो उसी समय भगवान ने अपने योग माया को स्मरण किया, और जब योग माया आती है तो जो जैसा कार्य करती है, वहां पर जो भी द्वारपाल थे वो सब के सब वहां पर मूर्छित हो गए, यहां पर जो बड़े बड़े ताले लगे हुए थे वो भी अपने आप खुल गए, जो पैर में बीड़िया पड़ी थी वो खुल गई, हाथ में हथकड़ियां थी वो खुल गई। अब भगवान ने कहा कि चलो मुझे ले चलो, कहां ले चले अभी? तो लोग कहते हैं, जो विचारक कहते हैं कि वहां तो कुछ ले जाने का कोई साधन था नहीं, परंतु वहां पर एक सुपड़ा था। सूप होता है आजकल लोगों को, नए लोगों को ये बोले कि सूप क्या होता है तो इनको पता नहीं लगेगा, पुराने लोगों को पता है कि सूप क्या होता है, जो जिससे धान को साफ करते थे। तो यहां पर एक सुपड़ा पड़ा हुआ था, वो ले लिया, क्योंकि सुपड़ा ही क्यों लिया, वहां पर कोई टोकरी होगी कुछ और होगा, वो सूप ही क्यों लिया, लोग ऐसा कल्पना करते हैं। सूप जो है वो तत्व को रखता है और जो उससे विपरीत है उसको फेंक देता है, अनाज को नहीं फेंकेगा, जिसके अंदर तत्व है उसको बाहर नहीं त्यागेगा, वो जो पदार्थ आवश्यकता नहीं है उसको वो बाहर त्याग देता है, और शेष जो है वो शुद्ध तत्व को अपने पास रखता है, इसलिए भगवान परिशुद्ध है। इसलिए भगवान ने उसमें जाने का उन्होंने कहा कि सब हम जो भी कर्म करते हैं ना उसके ही प्रेरणा से करते हैं, प्रेरक अंदर बैठा हुआ है। आप सोते हुए कोई कर्म करते हैं क्या? हाथ पैर हिलाते होंगे लेकिन आपको पता लगता नहीं है, लेकिन जागृत में आप जब कर्म करते हैं तो आपको अंतर चेतना के द्वारा, भले ही माया का उसके समावेश हो, गुणों का समावेश हो, परंतु अंतर चेतना वाला जब तक आपके भीतर वो परमात्मा नहीं होगा, जब तक वो अंश नहीं होगा, तब तक आप इस शरीर से कोई कार्य नहीं कर सकते। अंत प्रेरणा उसकी होती है, इसीलिए भगवान ने अंत प्रेरणा दी और उस सूप में कि अब ले चलो, वहां पर द्वार खुल गए थे और वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर के धीरे 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 बाहर जाते हैं। तो जैसे बाहर निकले उस समय उत्तर प्रदेश के उत्तर भारत के अनुसार भाद्रपद मास था और यहां के प्रमाण से वो श्रावण मास, श्रावण कृष्ण पक्ष। पक्ष में अंतर नहीं है, तिथि में अंतर नहीं है, कुछ किसी चीज में अंतर नहीं है, केवल मास के बोलने में अंतर है। उत्तर भारत में उसको केवल भाद्रपद बोल देते हैं, एक महीना एक पकौड़ा पहले बोल देते हैं, वो मास का नाम बदल देते हैं, बाकी सब वैसा यथावत। उस समय श्रावण मास में वर्षा होती है। अब तो पहले तो बंबई में कभी भी हम लोगों ने इस दिसंबर में बारिश नहीं देखी, अब कल क्यों आई ये अपने को पता नहीं है। अब उसके लिए आए, कभी कभी होता है नदी नाव संयोग होता है, हम लोग अपने उसको अपने पर श्रेय ले लेते हैं। अब कहीं भागवत नहीं चल रही होगी, वहां क्यों वर्षा हुई, हो सकता है कि अंधेरी में बोरीवली में सूरत में बारिश नहीं, वहां पर कोई भागवत नहीं हो रही होगी, लेकिन वहां भी बारिश तो हुई, परंतु यहां वर्षा हुई इसलिए हम लोगों ने क्या मान लिया कि भागवत हुई इसलिए वर्षा हुई। कभी कभी ऐसा होता है और कभी कभी सचमुच ऐसा कोई दृश्य देखने को मिलता है जो अद्भुत होता है। एक बार हम लोगों ने ऐसा दृश्य देखा था, बहुत पहले की बात है, लगभग मुझे लगता है कि 82 की बात है। ये जो ये बटुक जहां से आए हैं ना, वहां तो नहीं, जो कल स्वामी जी आए थे, स्वामी नित्यानंद जी बरसार की बात नहीं, गणेशपुरी में स्वामी मुक्तानंद जी विदेश से आए और उन्होंने एक राज्याभिषेक रखा, मैं भी गया था, हमारे महाराज जी भी थे। वैशाख का मास था और वैशाख के मास में वहां पर एक यज्ञ चल रहा था और यज्ञ में बड़े विद्वान पंडित आए थे, वहां पर ब्राह्मण आए थे, यज्ञ हो रहा था। जैसे ही वहां पर यज्ञ की पूर्णा होती हुई उसी समय एक 20-25 मिनट के लिए घनघोर वर्षा हुई। इसलिए अपने यहां पर कहते हैं कि यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ के द्वारा ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है, वहां पर मैंने साक्षात देखा था। इसलिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि कभी कभी वो साक्षात घटना घटती है, परंतु कल वाली जो घटना थी वो अनायास थी, नदी नाव संयोग, वर्षा होनी थी पहले से, उसका चेतावनी आई थी, परंतु संयोग ऐसा है कि ये शुभ कर्म है, हम लोग यहां पर शुभ कर्म करने बैठे हुए हैं और अपने को मान भी लेना चाहिए कि कल भगवान का प्रागट्य हुआ और भगवान का जो प्रागट्य होता है उस समय का वातावरण था वो अपने लिए कभी कभी निर्मित कर देता है, उसका निर्माण कर देता है। हो सकता है कि उसने अपने लिए निर्माण किया हुआ उसमें हमारा कोई उसके अंदर महत्व उसका कोई हमारा कोई योगदान नहीं है, परंतु उसने उस ऐसे वातावरण का निर्माण किया। उस समय भी घनघोर वर्षा हो रही थी और भगवान को वो सुपड़े में लेकर के उस टोकरी में लेकर के वसुदेव जी महाराज चलते हैं और सामने जमुना जी हैं, जमुना जी अथाह प्रवाह है। उस समय यहां पर लिखते हैं कि उस समय वर्षा के कारण वो जल भरा हुआ था, वहां प्रवाहित हो रहा था, भरी हुई थी वो जमुना। विचार किया कि अब क्या करना चाहिए, तो धीरे धीरे आगे प्रवेश करते हैं और आगे प्रवेश करने के बाद में देखते हैं कि वहां पर जल तो है, जल में क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि वहां पर जाना है तो अंतर प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद में थोड़ा सा कमर जितना जल उसके आगे भी प्रवेश किया, जल बढ़ता जा रहा है, जल बढ़ता जा रहा है। वसुदेव जी ने विचार किया कि क्या करना चाहिए, जब उनके मुख तक जल आया तो भगवान ने विचार किया कि अब और अधिक ज्यादा परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, अपना एक चरण क्योंकि वो जमुना जी में स्पर्श किया, क्योंकि जमुना जी उनकी अभिन्न है, उनसे भिन्न होने वाले नहीं, उनसे अभिन्न होने वाले उनकी शक्ति है, इसलिए शक्ति ने उनका स्पर्श किया और फिर वहां से मार्ग दे दिया। और उस समय भगवान शेष उन्होंने विचार किया कि हमारे दृष्ट हमारे स्वामी उनको यहां पर वर्षा काल से उनको कोई परेशानी न हो, उनको कोई कष्ट न हो, इसलिए शेष भगवान ने उन पर छत्र धारण किया और धीरे धीरे वसुदेव जी महाराज पहुंचते हैं गोकुल में। कुछ विद्वान कहते हैं कि वहां भी भगवान ने अवतार ग्रहण किया था। यहां तो कुछ लोगों को पता भी था, यहां पर देवकी और वसुदेव जी को यहां पर पता भी था, वहां पर यशोदा जी को पता भी नहीं था। भागवतकार कहते हैं कि वहां पर यशोदा मैया को पता ही नहीं कि यहां पर मेरे यहां से कोई कन्या या कोई पुत्र पैदा हुआ है, ऐसा उनको कुछ भान भी नहीं है। तो विद्वान कहते हैं कि वहां पर भी भगवान ने अवतार ग्रहण कर लिया था और उसका साक्षात आप लोग अगर दृश्य देखना चाहिए तो यहां पर और कितने बैठे हैं आज देखा मैंने। तो बात सत्य है और परमात्मा केवल दो ही नहीं है, वो अनेक रूप रूपाय, उसके अनेक रूप हैं। परंतु भगवान ने दो जगह अवतार ग्रहण किया, एक मथुरा में, ज्यादा सर्दी तो नहीं लग रही लोगों को, थोड़ा कम करना तो कर सकते हूं। मैंने तो कहा कि मैं मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है, उन्होंने सबको सर्दी में डाल दिया। वहां पर भगवान का वहां भी अवतार हुआ था और वसुदेव जी महाराज वहां पर जाते हैं, परंतु देखा कि वहां पर एक कन्या का जन्म हुआ है। उस कन्या को अपने पास में लेते हैं और भगवान कृष्ण को, भगवान कन्हैया को वहां पर लिटा देते हैं और जैसे गए थे वैसे ही पुनः वापस आते हैं उस कारागृह में। और जैसे ही अंदर भीतर प्रवेश करते हैं, जैसा पहले का दृश्य था, पहले का सब समय था, उसी अनुसार वहां पर अंदर चले गए। उनके पैरों में बेड़ियां लग गई, उनके हाथों में हथकड़ियां लग गई और जो ताले लगे हुए थे वो फिर से वो ताले लग गए। और उनको फिर देखा कि वहां पर जो वहां पर सैनिक थे, रक्षक थे, उनको भी जागृति आ गई और वहां पर उस कन्या ने रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। बालक होता है वो रोता है, और जैसे ही कन्या ने वहां पर आवाज लगाई, उन्होंने रोने की आवाज आई, उस समय वहां के जो रक्षक थे, जो पहरेदार थे, उन्होंने सोचा कि वो जो आठवां गर्भ आने वाला था, इसने बार बार कंस ने कहा था कि जैसे ही आए वैसे ही मुझे बता देना, और वैसे दौड़े दौड़े गए और कंस को बताया। और कंस रात को सोया हुआ था, उस रात को सोया था तो 12 बज चुके थे। वसुदेव जी महाराज भगवान को रख के भी आए थे, समय ज्यादा अधिक हुआ होगा, परंतु उस समय वो निद्रा तो क्या आती है, परंतु वो निद्रा से ही जैसे वस्त्र पहना था वैसे ही भागा भागा कारागृह की तरफ आया। और उसने देखा कि वहां पर आते ही और देवकी मैया ने कहा कि हे भाई, जैसे तुमने सोचा था कि पुत्र की उत्पत्ति होगी, परंतु ये कन्या हुई है, अब इस कन्या को तो मत मारो, तुमने 6 मेरे पुत्र को मार दिया, परंतु इसको तो मत मारो। परंतु जब किसी को दुष्ट को जो आवेश आता है, उस समय उसकी बुद्धि जब हर लेता है, उसने उसी समय उसने कुछ सोचा नहीं और उसने कहा, उसने अपने उस कन्या को अपने हाथ में ले लिया और हाथ में लेकर के उसने पत्थर पर मारना चाहा। और पहले भी ऐसे मारता था घुमा करके बच्चों को, उसने जैसे ही उस कन्या को उसने घुमा के पटकने का प्रयत्न किया, वो छटक करके आकाश में चली गई। और आकाश में जाने के बाद में उसने कहा, हे कंस, तो मुझे मारना चाहता है, अरे तुम्हें मारने वाला तो कहीं प्रकट हो चुका है, इसलिए तो अब बच्चों को मत माया कर मारा कर। कंस ने विचार किया कि पहले तो सोचा था कि ये आठवां गर्भ पुरुष होगा, पुत्र होगा, ये तो कन्या हुई, ये लगता है कि आकाशवाणी भी कभी कभी झूठ असत्य बोलती है, ऐसा उसको अलग। और वहां से आया और उसके घर महल में आकर के उसने सभी मंत्रियों को बुलाया और सभी मंत्रियों को बुला करके सबके पास एक मंत्रणा की कि आप क्या करना चाहिए, ऐसी ऐसी घटना घटी है मंत्रियों को, उसके मंत्री भी यथा राजा तथा मंत्री, प्रजा ने प्रजापति अच्छी थी उस समय
वहां प्रजा अच्छी थी,
प्रजा सब वहां पर सब लगते थे, सबको लगता था कि दुष्ट का संहार होना चाहिए, और कभी कभी न चाहते हुए भी हम लोगों को उसको स्वीकार करना पड़ता है। हम लोगों ने किया ना, 70-71 साल तक हम लोगों ने कुछ जाना ही नहीं कि देश क्या होता है, धर्म क्या होता है, जैसे चला रहे वो चले रहे थे ना, हम लोग चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे, अब पता लगा कि नहीं हम गलत थे और वो भी गलत थे। अब गलत थे कि नहीं गलत थे वो बात अलग है, लेकिन कुछ लोग तो सोचते हैं ना कैसा है। ऐसा ही वहां की प्रजा तो बहुत थी कि हम इस दुष्ट के जो संकट से हमारा निवारण हो जाए, परंतु उसके मंत्री, मंत्री कभी चाटुकार होते हैं, मंत्री होते हैं ना, और राजा के जो खास मंत्री, राजा पहले राजा लोग क्या करते थे, जो ऐसे कुछ लोग रखते थे जो हमारी स्तुति गाया करें, और जो स्तुति नहीं गाते थे फिर उनको बोलते थे ये योग्य नहीं, इसको निकाल दो यहां से। ऐसे कुछ जो स्तुति को, स्वयं की स्तुति को पसंद करने वाले, यहां पर भी ऐसे थे कि बलशाली था कंस, दैत्य था, राक्षस था, और उसके मंत्री भी ऐसे थे। उन्होंने कहा कि हे राजन, ऐसा करना चाहिए कि जो जो आप जो बता रहे हैं, तो जो कहीं ना कहीं वो जो पैदा हुआ है तो उसको नष्ट कर देना चाहिए। यहां पर कहते हैं कि मूलम ही विष्णु देवानम, जो देवताओं का जो मूल है वो विष्णु है, इसलिए। और वो कहां रहता है, विष्णु का स्थान कौन सा है रहने का, यहां पर लिखते हैं भागवतकर, यत्र धर्म सनातन, जहां पर सनातन धर्म होता है वहां भगवान रहते हैं, इसलिए उसको नष्ट करना चाहिए। और उसके जो माध्यम है, तस्य च ब्रह्म गो विप्र तपो यज्ञ सदक्षिण, यहां पर उस धर्म का स्वरूप बताया, जहां पर विप्र हो, जहां पर गो हो, जहां पर तप होता हो, जहां यज्ञ होता हो, और जहां पर सदक्षिणा यज्ञ होता हो, ऐसी जगह वो रहता है, इसलिए उसको नष्ट कर देना चाहिए। और कहते हैं उसका एक और स्वरूप बताते हैं, विप्रा गावाश्च वेदाश्च, ब्राह्मण है, ब्राह्मण यहां शब्द का प्रयोग नहीं किया, विप्र का शब्द किया, विप्र का मतलब है जिसने गायत्री धारण की हो, जो संध्या करता हो, जो वेदाध्ययन करता हो, उसको विप्र कहते हैं। गावाश्च वेदाश्च तपः सत्य दमश्यमः, यहां पर वही भगवान ने जो कहा है पहले, वही धर्म का स्वरूप बताया, श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतवश्च हरे स्तनु, ये भगवान का शरीर बताया। भगवान का शरीर क्या है, भगवान का शरीर जो हम लोग देखते वो नहीं है, यहां पर कहते हैं भगवान का शरीर, इसलिए हम ब्राह्मणों को क्या बोलते हैं, भूदेव बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं विप्रह। हम लोग गौशाला में जाते हैं तो क्या करते हैं, गौशाला को पीटते हैं, गौ को पीटते हैं नहीं, उनकी उनको स्पर्श करके हम उनको, उनके पूछ को अपने पर धारण करते हैं, क्योंकि उनके अंदर देवताओं का वास है। वेदा, जो आप लोग वेद मंत्र श्रवण कर रहे हैं, तप सत्य दमह शमह, ये सब भगवान का स्वरूप है, भगवान की मूर्ति है। श्रद्धा दया तितिक्षा, जिसके अंदर श्रद्धा हो, दया हो, तितिक्षा हो, जो यज्ञ हो रहा हो, ये सब हरे स्तनु, ये भगवान का शरीर है। तो ऐसे को नष्ट कर देना चाहिए, और जहां जहां पर भी जो छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए हो उनको सबको मार देना चाहिए। और ये करने के बाद में वो वहां पर सब सभा समाप्त हुई, और यहां पर प्रातः काल हुई है गोकुल में, अरे गोकुल में प्रातः काल हुई है, और वहां पर सभी लोगों ने देखा कि वहां पर यशोदा के ग्रह में वहां पर नन्हे बालक का जन्म हुआ है, और वो छोटा सा गोकुल रहा होगा, या जैसा भी है, सबको पता लग गया कि उस समय वहां का नंद बाबा के यहाँ पर पुत्र की प्राप्ति हुई है और उस समय सब लोग नंद बाबा के महल की ओर जा रहे हैं। जब महल की ओर जा रहे हैं तो उस समय नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं और उन्होंने अनेक अनेक प्रकार से उस समय उत्सव किए हैं और वहां पर नंद उत्सव प्रारंभ होता है। हम लोगों ने थोड़ा तो कर ही मना लिया, जन्म होने के बाद में लोग उत्साह में आ जाते हैं और इतनी लंबी कथा करना वो जन्म के बाद में बहुत कठिन हो जाता है। कल हुआ ना इसे, पहले तैयारी थी दो के आने के, दो आए ना कल, दो स्वरूप भी आए और यहां पर दो पहले से बैठे हुए थे। अब एक आने के लिए हम लोग इतने तत्पर रहते हैं, इतने उत्साहित रहते हैं, दो दो जब आ जाए तो कहना ही क्या। अब नंद बाबा के यहां पर सभी गोकुलवासी जो जो जिनके पास में जो साधन है वो लेकर के आए हैं। उस समय के खास करके गोरस होता था, दही है, दूध है, सब अपने पास में लेकर के नंद बाबा के महल की ओर सब चल रहे हैं और वहां पर उत्सव प्रारंभ हुआ।
नंद गेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिना घोड़ा दिना और दिना पालकी, हाथी दिना घोड़ा दिना और दिना पालकी, हाथी दिना हाथी दिना घोड़ा दिना और दिना पालकी, जय हो नंद गेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद गेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, ए सुखी आज आनंद ना उघवड़ा सारेली रे सखी, आज आनंद ना उघवड़ा सारेली रे, मने बढ़िया श्री नटवर लाल वन रावण पूज मारेली रे, मने मया श्री नाटवर लाल वन रावण पूज मारेली रे सखी, आज आनंद ना ओ घबरा सा देरी रे, आज निगड़ी ते रड़ी आवड़ी, आज निगड़ी ते रड़ी आवड़ी हरे सखी, आज निगड़ी ते रड़ी आवड़ी, रे मारा वालो यारानी वधामणी, दिने मारा कानूडो आयानी वधामणी, आज निगड़ी तेरणी आवड़ी हरे सच, आखे आज नी घड़ी तेरे
करे मोर बन धन घट करे मोर बन धन
घेर घेर बंगला घेर घेर गाड़ियों घेर घेर बंगला घेर घेर गाड़ियों रिंग रोड पर लोड़ी केवाड़ियों बनवाला मला लगो बनवाला मला लगो बन प्यारा प्यारा लगो महाराज वाटे तुम्हारो गरवीर गुजरात मा महाराज वाटे तुम्हारो सांगू सांगू मी सांगू को नाला आज आनंद आनंद जाला सांग सांगो मी सांगो कोणाला आज आनंद आनंद जाला आला आला रे गोविंद आला 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 गोपाल मारो पारणिए झूले रे गोपाल मारो पारणिए झूले रे झूलावे गोकुल देनारी ने झूलावे गोकुल देनारी ने गोपाल मारो पारणिए झूले रे गोपाल मारो पारण जहो महाराज हो गोपाल तने रामा गड़ा आलो रे गोपाल तने रामा गड़ा आलो रे गोपाल तने माकणियों वालो रे गोपाल तने माकणियों वालो रे गोपाल मारो बोले ते कालो कालो गोपाल मारो बोले ते कालो कालो गोपाल मारो पारणिए झूले रे गोपाल मारो पारणिए झूले रे जय हो आला रे आला जरा मटके संभाल भेज बाला गोविंद आला रे आला जरा मटके संभाल भेज बाला गोविंद आला रे आला जरा मटके संभाल भेज बाला गोविंद आला रे आला जरा Thank you. सावड़ी रे रण चढ़ावा गुण सजी सजदा के सवा बन नोरे तू कल रूपा अगमनी तूरे रम जो रम जो रे मोरानी उतम रम जो सारी रात कानूड़ो मायो देने आज मेरा
कन्हैया लाल की जय आज के आनंद की
जो बाजे घुंघरिया जब देख लाए काना मेरे घर आए आए मेरे घर आए बाजे घुंघरिया छत देख लाए कान्हा मेरे घर आए कान्हा मेरे घर आए रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए माता यशोदा और हम सबको भागे भागे माता यशोदा और हम सबको भागे भागे जो काली कांवलिया जो काली कांवलिया नयन नचाते आए मेरे घर आए काना मेरे घर आए श्रावण वद आठमणी है सुहामणी सुहामणी श्रावण वद आठमणी है सुहामणी सुहामणी आनंद मंगल गाए सब ब्रज गामिनी गामिनी जब मरवर से देवलिया जब मरवर से देवलिया जब मरवर से देवलिया भक्त जन गुण को गाए मेरे घर आए आए मेरे घर आए चुम चुम बाजे घुंघरिया जब दिख लाए काना मेरे घर आए काना मेरे घर आए चुम बाजे घोघरिया जब देख लाए काना मेरे घर आए आए मेरे घर आए पर सुन कर बंसी सखियां सुध बुध खो गई सुन कर बंसी सखियां सुध बुध खो गई दर्शन करके मैं तो पावन हो गई दर्शन करके मैं तो पावन हो गई कैसे प्यारे सांवरिया कैसे प्यारे सांवरिया भक्त जन गुण को गाए भाग्य लुटाते आए मेरे घर आए चुप चुप बाजे घूघरिया जब देख लाए तेरे घर आए आए मेरे घर आए काना मेरे घर आए मेरे घर आए मेरे घर आए आए मेरे घर आए
बाल कृष्ण लाल की जय जब हम लोग यहां पर भगवान का प्रागट्य हुआ तो इतना आनंद है तो उस घर में जब साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा जो आविर्भूत हुए होंगे क्या आनंद रहा होगा हम उसकी कल्पना कर सकते हैं भगवान का नाम ही है एक आनंद स्वरूप सच्चिदानंद रूपाय सदचिद और आनंद स्वरूप परमात्मा तो साक्षात जब आविर्भूत होता है साक्षात वो अवतार ग्रहण करता है तो उनका क्या स्वरूप रहा होगा अद्भुत नंदस्त्वात्मजः उत्पन्ने नंद बाबा समझ रहे कि मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हुई है जाता लधो महामनः उनके आनंद 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 ही हुआ उनके हृदय में भागवतकार बड़ा सुंदर शब्द लिखते हैं उनका जब पुत्र प्राप्त हुआ उनको तो उनके हृदय में इतना आनंद हुआ सबसे पहले उन्होंने आहुतया विप्रान वेद ज्ञान पहले से ब्राह्मणों को बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके स्नातः सुचिरलंकृतः स्नान करने के बाद में उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए सुचिता बोलते हैं हमारे यहां पर जब भगवान को आपको प्राप्त करना हो भगवान की सेवा करनी हो भगवान को आपको आराधना करनी हो तो सुचि होनी चाहिए अंतर बहिर भीतर भी और बाहर भी दोनों तरफ शुचि होनी चाहिए पवित्रता होनी चाहिए भीतर की पवित्रता यह है कि काम आदि दोषों से मुक्त होकर के भगवान का पूजन करना चाहिए अब कोई नहीं थोड़े देर के लिए कोई नहीं ना व्यापार है ना धंधा है ना पोता है ना पुत्र है कुछ नहीं उनसे विरक्त होकर के शुचिबद्ध होकर के शुचियुक्त होकर के भगवान का ध्यान करना चाहिए और यहां पर उसी प्रकार स्नाता ये बाह्य पवित्रता है स्नान करना ये बाह्य पवित्रता और आंतरिक उस परमात्मा का नाम लेना हम लोगों को सिखाया जाता है कि आप जब स्नान करने जाओ तो हम लोग क्या करते हैं, गंगे 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 जमुने चे व गोदावरी सरस्वती, हम लोग स्नान करते हैं, स्नान करते समय क्या हम याद करते हैं, गंगा का स्मरण करते हैं, गंगे हमको आप पवित्र करो, बाह्य शुचिता और शुचि हो गए हैं और उन्हें सुंदर सुंदर अलंकार ग्रहण किए इन्होंने नंद बाबा ने, और सभी गोकुलवासियों ने भी उसी प्रकार का वहां पर वेश धारण किया है कि नंद बाबा के घर में आज उनके यहां पर पुत्र की प्राप्ति हुई है। और उसी समय नंद बाबा के हृदय में बहुत आनंद हुआ और उस समय उन्होंने ब्राह्मणों को बुला करके उन्होंने जात कर्म करवाया अपने यहां पर। प्रथम मैं आचार्य जी को खोज रहा था तब तक काम हो गया। मैंने पूछा है जात कर्म हमारे यहां पर बार बार आता है, हमारे यहां पर षोडश संस्कार होते हैं, जन्म संस्कार के पहले उसके बाद में तुरंत जात संस्कार का नाम यहां पर आया है, वो कौन सा संस्कार हो गई बात। तो वो संस्कार कौन सा, अपने यहां पर पहले दिन से लेकर के 11वें दिन तक जो संस्कार होते हैं, पहला संस्कार होता है, आजकल के डॉक्टर लोग मना करते हैं परंतु हमारे यहां पर कहा जाता है कि उस बालक को स्वस्थ रखने के लिए जो शहद है उसको जीभ पर चटाया जाता है कि उसकी वाणी में मधुरता हो, उसका शरीर स्वस्थ हो। ये मधु है ना, हमारा संपूर्ण आहार है। आप जब मधु को ग्रहण करते हैं तो समझ लेना चाहिए कि आपको संपूर्ण आहार मिल गया, उसके अंदर सभी पदार्थ हैं। उसके बाद में उनको स्नान कराया जाता है और स्नान करने के बाद में उनको जो जो और भी कार्य होते हैं, क्योंकि उस बालक की आयु हो वो स्वस्थ बना रहे। अब उसके बाद में नंद बाबा ने 7 तिल के पर्वत बनाए और 7 तिल के पर्वत बना करके उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिए और साथ साथ में उनके स्वर्ण आभूषण जो जब इतना आनंद हुआ होगा तो स्थूल वस्तु की कोई वहां पर कीमत नहीं। जब आपको आनंद आता है ना तो ऐसा तो नोट बहुत जल्दी निकलता नहीं है, लेकिन वो बजाते हैं ना खड़खड़ खड़खड़ कर बनाते हैं तो फिर उस समय वो लोग चाहते हैं कि ये कुछ ना कुछ निकाले, क्योंकि आपके अंदर से आनंद प्रकट कराना चाहते हैं और फिर आप वो नोट निकाल करके आप कहीं ना कहीं चढ़ा देते हैं, वो आपका आनंद बाहर आता है, वो व्यर्थ नहीं है क्योंकि आपका आनंद ही स्वरूप है। इस प्रकार उनको आनंद हुआ और उन्होंने अनेक संस्कार कराए और संस्कार कराने के बाद में सुंदर वहां पर वस्त्रालंकार धारण किए। सुधा मैया भी बड़ी सुंदर वहां पर सजी हुई है और सब लोग आनंद पूर्वक, जिस प्रकार हम लोगों ने अभी थोड़ा सा आनंद किया, यही तो उत्सव है। उत्सव का नाम है कि हमारे में उत्साह आ जाए और उस उत्सव के अंतर्गत हम अपने आप को प्रदर्शित करें। ये आपके भीतर का जो उत्साह है वो प्रकट होता है। भैया थोड़ा सा अभी आप थोड़ा सा कम कर दो, हो गए सब लोगों के पसीने सूख गए हैं। नहीं नहीं आप चलने दो, इसको बोल रहा वो देख रहा हूं पीछे कुछ माताएं चद्दर लेके बैठी हुई है। अब वो पहले वो पसीने आए थे तो पसीने सूख गए ना, पसीने अंदर की अग्नि प्रज्वलित हुई थी, पंच तत्वों में से एक अग्नि भी है वो प्रज्वलित होती है तो हमको आनंदित करती है। यशोदा मैया भी बहुत सुंदर वस्त्र अलंकार धारण किए हैं और उसके बाद में उन्होंने भी सब वहां की जो गोपिकाएं आई थी, वहां के सभी लोग आए थे उनके साथ में, उनका स्वागत किया और खास विशेष करके वहां पर रोहिणी माता सबका स्वागत कर रहे थे, सभी आओ आओ हमारे आंगन में, सबके सब आंगन में पहुंच गए। और परंतु कुछ अपना कार्य होता है, कुछ अपना दायित्व होता है, उस दायित्व को निभाने के लिए वहां पर संपूर्ण कार्य हुआ। और उस समय नंद बाबा ने विचार किया कि जो मेरा कुछ कार्य भी है उस कार्य को करने के लिए गोपान गोकुल रक्षणाम निरूप्य मथुराम गतः। अभी अभी तो बालक का जन्म हुआ है, अभी अभी बालक आए हैं, फिर भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए।
बहुत से लोग आते हैं, थोड़ी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, ठीक है, वो कर्तव्य निभाना चाहिए।
परंतु जब दुनिया के सब कर्तव्य समाप्त हो जाए, उस समय एक ही कर्तव्य रह जाता है, वो है आपका आत्मकल्याण। लेकिन वो कर्तव्य हमारे कब पूरे होते हैं? होते ही नहीं है। कभी कभी हम लोग जब किसी का शादी विवाह होता है ना, तो वो जो बच्चे होते हैं उनको दो चार साल तक कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, कोई संतान की प्राप्ति नहीं होती, तो वो इधर उधर चले जाते हैं लोग और पूछते हैं कि हमारा वंश आगे चले, कुछ आशीर्वाद दे दो। और किसी के आशीर्वाद से और परंपरा है, पुत्र की उत्पत्ति होती है और फिर जो बूढ़े माँ बाप है ना, वो प्रतीक्षा करते हैं कि कुछ पौत्र का भी मुंह देखने को मिल जाए। है ऐसे कि नहीं? हो ऐसे ना, ऐसा होता है, कामना होती कि पौत्र का भी मुख देखूं। और कुछ लोग तो कहते हैं कि परपौत्र का अगर मुख देखने को मिले, उससे बढ़कर के आनंद क्या होगा। ऐसा होता है और स्वाभाविक भी है, संसार का नियम है कि उनको आनंद वहीं पर प्रतीत होता है, उससे कितना सुख होता है वो तो आप जानो। परंतु जब आपके कर्तव्य समाप्त हो जाए, तो केवल परमानंद को प्राप्त करने के लिए यत्न करना चाहिए, और वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके भीतर है। इसलिए यहां पर नंद बाबा यही संदेश देते हैं कि कर्तव्य करते रहना चाहिए। गोपां गोकुल रक्षणायां निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातु कुरुद्वः। वो कंस उस समय का राजा है और राजा को कर देने के लिए पुरानी परंपरा है। आजकल के सरकार ने एक टैक्स लगा दिया, क्या जीएसटी बोलते हैं ना, उपभोक्ता कर बोलते हैं हिंदी में उसको, लोग उसका विरोध कर रहे हैं। अरे आप टैक्स नहीं देंगे तो राज्य कैसे चलेगा? इसलिए वो आवश्यक है, क्योंकि अपने को सुरक्षित रहना है, अपने को बलवान बनना है, दुनिया में अपने की पहचान होनी चाहिए, उसके लिए राष्ट्र समृद्ध हो। जो हम कमाते हैं ना, उसका कुछ हिस्सा सरकार को देना हमारा धर्म बनता है। और ये आज से नहीं है, पहले तो उसको वसूल करते थे, आजकल वसूल नहीं करते हैं। आजकल बोलते भाई तुम टैक्स भरो, ये पुरानी परंपरा है। नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुस्तः। वो अपना कर चुकाने के लिए नंद बाबा कहां जाते हैं? मथुरा जाते हैं, और वो नंद बाबा अपना वहां पर जो भी कुछ कर देना होगा वहां पर कर देते हैं। उस समय जो भी व्यवस्था होगी, व्यवस्था एक समान नहीं होती हमेशा। हमारे बाप दादा के समय में चांदी के सिक्के हुआ करते थे, और फिर बोलते हैं कि जो है समय फिर से वापिस, फिर वो वापिस लौट के आता है और फिर से वो शायद जो गुलाबी नोट निकाला है ना, वो भी ज्यादा दिन चलने की संभावना कम ही है। अब ये जो गुलाबी पहने हैं ना, उतार लेंगे बाद में, गुलाबी का ज्यादा देर चलन नहीं होता है। था कि नहीं बना पाने अपने अपने कल्पना से। तो ये परिवर्तन होता रहता है। उस समय जो भी उनके पास में देने की वस्तु होती होगी, चाहे गोरोस होता होगा, चाहे वहां पर कुछ भी होता होगा, वो देने के लिए, वार्षिक कर देने के लिए मथुरा चले जाते हैं। और मथुरा में वार्षिक कर देने के पश्चात उनको पता लगता है कि यहां पर वसुदेव जी और देवकी हैं, तो उनको मिलने के लिए नंद बाबा उनके निवास पर चले जाते हैं। और निवास पर जाने के बाद में उनकी दोनों की चर्चा होती है। वसुदेव जी महाराज जी सब जानते हैं, कभी कभी जानते हुए भी मौन रहना पड़ता है। अगर भेद खोल देंगे तो कष्ट का अंबार लग जाएगा, कष्ट कितने आएंगे उसकी पारावार नहीं है। इसलिए वहां पर दोनों की चर्चा होती है। नंद बाबा कहते हैं वसुदेव जी को कि तुम्हारे अनेक पुत्र हुए और दुष्ट कंस ने उनको मार दिया। बड़ी दुखद घटना है। और एक कन्या हुई थी वो भी स्वर्ग सिधार गई, वो भी वो चली गई। ये तो बड़ी कष्ट की बात है। ऐसा दोनों का संवाद हो रहा है, नंद बाबा वही कहते हैं। और उस पर चर्चा चर्चा करते करते ये सब बातों को वसुदेव जी कहते हैं कि हे नंद बाबा, आपके घर में भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और आप आनंद आनंद आपको है। और आप यहां का आपने वार्षिक कर दे दिया है, आपने यहां का कार्य किया है, ऐसा लगता है कि गोकुल में बड़े बड़े उत्पात होने की आशंका है। नंद बाबा कह रहे हैं किसको? वसुदेव जी को। क्योंकि वसुदेव जी सब वस्तु को जानते हैं कि मैं रात्रि को दो दिन पहले ही वहां पर रख के आया हूं, तो अपने पुत्र की चाहे पिता कहीं भी रहे, चाहे मां कहीं भी रहे, मन कहां होता है? पुत्र के पास होता है। इनके तो साक्षात इनके ग्रह में उनका प्रादुर्भाव हुआ है। इनको पता है कि मैं वहां पर रख के आया हूं। और नंद बाबा क्या समझ रहे हैं कि मेरे यहां पर कन्हैया प्रकट हुआ है। दोनों अपना समझते हैं। यही तो धर्म की विशेषता है, परोक्ष और अपरोक्ष। हमारे यहां पर दो प्रकार का ज्ञान होता है। एक होता है परोक्ष ज्ञान, जगत में है, जगत में भगवान है, भगवान अनेक रूप में है, एक परोक्ष ज्ञान हुआ। और एक है अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान किसको है? वसुदेव जी को, क्योंकि वो जानते हैं कि जो साक्षात पूर्ण परब्रह्म अद्भुत बालक, तमद्भुतम बालकम अम्बुगुक्षणम, जिसकी गदा चक्रधारी जो भगवान है वो कहां है? वो जाकर के बैठे हुए हैं गोकुल में। इसलिए उनको कहा कि आपने वार्षिक कर भी दे दिया है, आपका यहां का कार्य भी हुआ है, तो आपको शीघ्रातिशीघ्र कहां जाना चाहिए? गोकुल में के लिए प्रस्थान करना चाहिए। वसुदेव जी की बात श्रवण करने के बाद में नंद बाबा वहां से पुनः गोकुल में प्रस्थान करते हैं। और जब गोकुल में प्रस्थान करते हैं उस समय जब तक यहां कहते हैं कि कंस की रात को सभा हुई थी, उन्होंने सब लोगों ने विचार किया था कि जो जो छोटे छोटे बालक जो वहां पर जिनका जन्म हुआ है उनको सबको मार देना चाहिए। और खबर पहुंच गई थी, कहां? मथुरा में खबर पहुंच गई थी कि नंद बाबा के यहां पर एक पुत्र का जन्म हुआ है और वहां पर एक राक्षसी थी, उसका नाम था पूतना। और पूतना ने वेश धारण कर लिया, बड़ा सुंदर स्वरूप धारण कर लिया, मेकअप कर लिया। और राक्षसी थी, फिर भी कभी कभी मेकअप भी अच्छी लगती है। और मेकअप से तो दुनिया चल रही है, हम सब मेकअप करते हैं। कोई किसी की मेकअप करता है, कोई किसी की मेकअप करता है। अगर कोई छोटा छोटा कोई छोटी सी कोई अपने में कमी हो तो उसको दूर करने का प्रयत्न करते हैं। एक कोई पाश्चात्य में डांसर था जिसका नाम माइकल था, उसने कितने ऑपरेशन करवाए थे कुछ गिनती नहीं। काला था वो, गोरा हो गया था। ये एक मेकअप का एक प्रकार है। तो पूतना ने भी, वो तो राक्षसी थी, उसने सुंदर स्वरूप धारण कर लिया क्योंकि सज्जनों में जाना है ना, तो सज्जनों में जाना है, पैसे वालों में जाना है। तो लोग जो शादी ब्याह होता है ना, तो वहां पर बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहले सिलाते हैं कि आज शादी है हमारे सखा की, हमारे घर में है, परिवार में है, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र सिलाते हैं। और आजकल तो बोलते हैं कि कुछ किराए से ही मिल जाते हैं, कोट वोट मिलते, ऐसा सुना है मैंने कि नए सिलाने की आवश्यकता क्या है, तो किराए से ले आओ और पहन के चले जाओ। क्या चिमन भाई, बरोबर ना? आओ सामने चले, क्या रहे? ऐसा सुना है उसने, उस समय भी उसने वो इधर उधर ध्यान था इसलिए उनको मैंने बताया। अब सबके तरफ ध्यान जाता है मेरा, तभी क्या है दृष्टि तो है ना भी। अब यहां पर एक बार एक संत आए थे, उन्होंने आग बंद करके कथा की थी, हमारे शिष्य हैं वो, भागवत उनकी बड़ी अच्छी है, तो वो भागवत जब करते हैं तो आंखें बंद करते किसी की तरफ देखते ही नहीं है। तो दूसरी बार जब उनके लिए कहा तो यहां के किसी सज्जन ने कहा कि उनकी कथा यहां पर नहीं जमेगी क्योंकि वो आंख बंद करके कथा करते हैं, इसलिए मैं आंख खोल के कथा करता हूं। देखता हूं कौन क्या करता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अरे जितने श्रोता है वो कम से कम सुन तो ले कुछ। अगर आपको कभी निद्रा आ गई और आपको देख करके कि मुझे भी आ गई तो क्या करेंगे फिर? तब तो ये रहेंगे और ये फिर वो बजाते गाते रहेंगे, फिर हम लोग दोनों ही फिर बाद में जय श्री कृष्ण करके चले जाएंगे। उस समय सुंदर स्वरूप धारण करके पूतना पहुंच जाती है जहां पर नंदोत्सव चल रहा है, और नंदोत्सव अनंत है, दीर्घकालीन है। यहां पर भगवान का जब नंदोत्सव चल रहा है और वहां पर बड़ी बड़ी सज धज करके, और जब उत्सव होता है ना तो हम अपने आप को भी विसरते हैं, भूल जाते हैं और अपनों को भी भूल जाते हैं। वहां पर उत्सव हो रहा था किस लिए? कन्हैया के लिए, बालकृष्ण के लिए, परंतु उनको बाजी में लिटा दिया और सब लोग गाना वहां पर गीत गाने लगे, और गीत गाते गाते वहां पर सब इतने तल्लीन हो गए और उस पुत्र ने विचार किया कि अब प्रवेश करना मेरे लिए आसान है। जब आप असावधान हो जाते हैं तो अनेक दुष्प्रवृत्तियां आपके जीवन में प्रवेश करती हैं। जब आप आपकी साधना हटी, आपका ध्यान हटा, लिखा रहते हैं ना रोड़ों पर, ध्यान हटी, ध्यान हटा और दुर्घटना, वो दुर्घटनाएं घटती है। और वहां पर भी इसी प्रकार का एक समय निर्माण हुआ और वहां पर पूतना का प्रवेश हुआ। सब अपने में मग्न थे क्योंकि उनको आनंद ही आनंद था कि हमारे यहां पर आज भगवान का प्रागट्य हुआ है और वहां पर पूतना का प्रवेश हुआ है, और पूतना बड़ी सुंदर सजी हुई है। उसने विचार किया कि सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, और पूतना ने धीरे से वो बालक के पास गई। अपने को पता लगता नहीं है कि कौन सज्जन है कौन दुर्जन है, वो ऊपर से नहीं पता लगता है। पहली बार जब आप देखो तो नहीं पता लगता है, परंतु जो दुर्जन होते हैं ना वो सज्जन से ज्यादा सावधान होते हैं। दुर्जन होते हैं वो सज्जन से अधिक वो अपने आप को सज्जन बतलाने का प्रयत्न करते हैं, वाणी से व्यवहार से उनकी बड़ी चालाकी होती है। वो भीतर अलग होते हैं और बाहर अलग होते हैं, और सज्जन होता है वो भीतर भी एक जैसा होता है और बाहर भी एक जैसा होता है। और वो चलाक स्त्री जिसका नाम पूतना था, वो धीरे से गई जहां पर बालकृष्ण लाल वहां पर लेटे हुए थे, उनको अपने गोद में लिया। और उस समय कहते हैं कि जब गोद में ले रही थी उस समय भगवान बालकृष्ण ने अपने आंखें बंद कर ली। उसको लगा कि ये भी बच्चा भी नहीं देख रहा है, उसने लेकर के अपने गोद में रख लिया और आंखें अभी भी बंद हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि पूतना को देख करके भगवान ने आंखें बंद क्यों की? जिसकी भगवान पर दृष्टि पड़ जाएगी वहां तो अज्ञान नष्ट हो जाएगा, परंतु भगवान ने विचार किया कि मुझे तो अब लीला करनी है, इसलिए आंखें बंद कर ली। आंखें जब बंद की तो पूतना को और अच्छा लगा कि अब ये भी नहीं देख रहा है, और उसने मातृवत, जैसे मां किसी बालक को स्तनपान कराती है, इसी प्रकार उसने स्तनपान कराने के लिए, क्योंकि उसने अपने स्तनों पर विष लगा के आई थी जिससे जाकर के उस बालक को मैं वहीं पर मृत्यु को पहुंचा दूंगी, और उसने अपने उस बालक के समान अपने गोद में लिया है और स्तनपान करा रही है। और धीरे धीरे भगवान ने ध्यान किया शंकर जी का, मुकुंद प्रियम, जो भगवान का ध्यान किया शंकर जी का ध्यान किया, हे शंकर जी, हे मुझे तो ये आदत नहीं है जहर पीने की, विष पीने की आदत तो आपको है। जब समुद्र मंथन हुआ था वहां पर हलाहल नाम का विष निकला था और आपने गटगट गटगट सब पी लिया था, पिया था कि नहीं पिया था? और इसलिए आपका नाम एक नीलकंठ हुआ, आप तो इसमें माहिर हैं, आपको इसमें विशेषता उसको आपको इसमें हासिल है, तो आप यहां पर आइए। इसलिए कहते हैं कि उस समय भगवान ने ध्यान किया, किनका? भगवान शिव का। और भगवान शिव आकर के उस जहर को पान करके चले गए, विष पान करके चले गए। अब वहां रहा दूध, भगवान ने वहां पर दूध पीना शुरू कर दिया और दूध पीने के साथ साथ में उसकी जो चित्तवृत्ति थी उसको लगता था कि मैं इस बालक को यहां पर मार दूंगी, और भगवान ने धीरे धीरे उसकी चित्तवृत्ति भी अपने मुख के द्वारा उसको प्राशन शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसका रुधिर भी उन्होंने भगवान ने उसका पान किया। और फिर उसको लगा कि मैं तो अभी संकट में हूं, मुंच 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 मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। भगवान ने कहा कि एक बार मैं पकड़ता हूं फिर दोबारा छोड़ता नहीं हूं, इसलिए अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उनके प्राण भी ले लिए और वहां पर देखा कि उसके जो प्राण थे वो चले जाने के बाद में उसका वास्तविक स्वरूप वहां पर प्रकट हुआ। और तब तक नंद बाबा पुनः लौट के आते हैं और देखा कि वहां पर सब लोग उस जो राक्षसी है उसके जो उसका जो पड़ा हुआ जो मृत देह है वो बहुत विशाल हो गया था, उसको काट काट करके उसको निकाल रहे थे और निकाल करके उसको जाते जा रहे थे उसको दाह संस्कार करने के लिए। और कहते हैं कि जब उसका दाह संस्कार हो रहा था तो उसमें जैसी अगरबत्ती जलाते हम लोग वैसी वहां से सुगंधी आ रही थी, क्योंकि भगवान का स्पर्श हुआ था, भगवान ने उसको मुक्ति प्रदान की थी। ये दृश्य जब नंद बाबा ने देखा उस समय उनको विचार आया कि वसुदेव जी महाराज जी कहते हैं कि तुम शीघ्र गोकुल लौट जाओ, वहां पर बड़े बड़े उत्पात होने वाले हैं, उत्पात हो रहे हैं। इसलिए ये समझ करके फिर पुनः नंद बाबा वहां आते हैं और फिर अपने जो पुत्र हैं जो बालक है उनका ध्यान करते हैं। और वो बालक कौन है? साक्षात परब्रह्म है। और ऐसे परब्रह्म का सब लोग भजन करते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन
काल में अनेक लीलाएं हैं, जितनी हो सकेगी उतनी लीलाओं का गान करेंगे और मध्य में गोवर्धन पूजा होगी और गोवर्धन पूजा के पश्चात भगवान की और थोड़ी लीलाएं होंगी और फिर रास का प्रसंग आएगा। तो आप लोग रास तैयार हो जाना और हम लोग आधा घंटा आप लोगों को देंगे और उसमें आप लोग खूब रास करना, भगवान का स्मरण करना, जैसे आप लोगों ने सुबह प्रसन्न होकर के आनंदित होकर के भगवान का भजन किया भजन के द्वारा, उसी प्रकार सायंकाल भी आप लोगों को वो अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि गोपिकाएं उस भगवान के साथ में उन्होंने नृत्य किया था, उनके साथ रास किया था, उसी प्रसंग को हम लोग और जो यहां पर जो व्यवस्थापक लोग हैं वो कैसे करना है वो जाने, मैं आंख बंद करके बैठ जाऊंगा।
श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण आदि नारायण 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 आदि नारायण 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 हरि आदि नारायण 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 आदि नारायण नारायण नारायण।
श्रीमद् भागवत भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। प्रेमपुरी जी महाराज की जय। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हालो ने जाई सत्संग मा श्री राम से सत्संग मोटू धाम से सत्संग मा तीर जाने सोने जय श्री कृष्ण से भाई सोने जय श्री कृष्ण से। हालो ने जाई सत्संग मा सत्संग मोटू धाम छे सत्संग मा श्री राम छे सत्संग मा धीर जाने सौने जय श्री कृष्ण से वाय सौने जय श्री राजा परीक्षित ने ज्ञान उपजो आव्या गंगा तीर जो भाई आव्या गंगा तीर जो सत्संग मा तीर जा लेने सोने जय श्री कृष्ण। काय शिखे ने सुने सांभरे इनो हो जो व्रज मा वास जो भाई हो जो व्रज मा वास जो सत्संग मा तीर जा लेने सोने जय श्री कृष्ण से भाई सोने जय श्री कृष्ण। दूरी की ते दूरी पल ने की तूने मोरी मेरे सपनों को झुलाया निंदिया तेरी चोरी निंदिया तेरी चोरी दिया तो रखे मेरे पास तेरी लाड़ी की मैं तेरी लाड़ी की मैं तेरी लाड़ी की मैं छोड़ूंगी ना तेरा साथ छोड़ूंगी ना तेरा साथ तेरी लाड़ी की मैं छोड़ूंगी ना तेरा साथ तेरी लाड़ी की मैं छोड़ूंगी ना तेरा।